हमारे राठौर कैसेट और ब्रजेश शास्त्री से प्रेम करने वाले सभी श्रोता बंधुओं, हमारी आवाज में सदाब्रज सोरंगा की कहानी राठौर कैसेट के माध्यम से सुनने जा रहे हैं, जिसके निर्माता हैं हमारे राम शरण राठौर पत्रकार। हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस कहानी को बड़े प्यार से सुनेंगे। आइए गौर करते हैं सदाब्रज सोरंगा की कहानी में, कि ये सदाब्रज सोरंगा कौन थे। एक प्रमाण तो ये मिला है कि ये इंद्र के दरबार में नाचने वाली रंभा नाम की अप्सरा थी। ये एक सौदागर के ऊपर आशिक हो गई और इंद्र के पास विलंब से पहुंची, तो इंद्र ने पूछा कि तू कहां रही, तो उसने बहाने बनाए। इंद्र ने श्राप दे दिया, रंभा तू जिसके पीछे झूठ बोल रही है जिंदगी भर उससे मिलेगी, बिछड़ेगी, लेकिन तेरी आस कभी पूरी नहीं होगी, ये हमारा श्राप है तेरे लिए।
अरे इंद्र ने तब ही श्राप दयो, अरे मेरी रंभा तेरी होए नहीं आस जी।
दोनों आकर के सदाब्रज सोरंगा बने। तो आ जाइए देखते हैं राठौर कैसेट में।
एक गांव में एक महात्मा जी आए, और जब गांव में महात्मा जी आए, हुआ ऐसा गांव में इधर उधर घूम रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन गांव के पता नहीं वो लोग कैसे थे।
कैसे थे?
अरे द्वार द्वार साधु फिरो मेरे भैया, जाए मांगे मिली नहीं गंगा भीख जी।
अरे द्वार द्वार साधु फिरो मेरे भैया, जाए मांगे मिली नहीं गंगा भीख जी।
महात्मा जो रहे वो गांव के दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो गांव के कैसे लोग थे जो उन्होंने किसी ने भीख नहीं दी। वैसा
दिन भरी घूमे पूरे गांव में वो साधु, दिन भरी घूमो पूरे गांव में वो साधु, जाए तो किसी ने कछु नहीं दी।
समझ में नहीं आता है,
इस गांव के पता नहीं कैसे लोग हैं, आज चार दिन हो गए बड़ी तेजी से भूख लगी थी। मैंने ये रास्ते में गांव देखा तो ये सोचा यहाँ तो भोजन हमें मिल ही जाएगा, अब तो हमसे पैदल भी नहीं चला जाता है। मुझे नहीं मालूम था कि इस गांव में इतने पापी लोग भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें भीख नहीं दी तो हम इस पूरे गांव को ही श्राप दे देंगे।
सीताराम स्वामी जी।
सीताराम
महाराज, बड़ा विचलित मालूम पड़ रहे हैं आप। प्रभु, भोजन की अभिलाषा है या वस्त्र की जरूरत है? उदास ये चेहरा आपका देखा नहीं जा रहा। प्रभु, भोजन पाइए। प्रभु,
पूरे गांव में हम घूम के इधर से निकलते हुए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गांव में पता नहीं क्या बात है जो हमें किसी ने भीख नहीं डाली, चार दिन हो गए। चलो तुम पूछ रहे हो, कोई बात नहीं।
पूछ अब... नहीं रहे महाराज, आप भोजन पाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। पूरे गांव तो अलग अलग स्वभाव के लोग हैं।
मुझे नहीं मालूम था कि परमपिता परमात्मा सबकी सुनता है, ये तो मालूम था, लेकिन आज देख भी लिया कि पूरे गांव ने किसी ने भीख नहीं दी, लेकिन आप हमारे पास में आए हैं पूछने के लिए। लेकिन बेटा, मेरी बात अगर मानो तो तुम इस गांव को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पापी रहते हैं और हमारे जाने के बाद में इस गांव में आग लग जाएगी।
क्या कह रहे हैं स्वामी जी, इस गांव में जब आग लग जाएगी तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। एक संत को इतनी क्रोध में नहीं आना चाहिए। प्रभु, हम आपकी सेवा करेंगे। अरे पूरे गांव को आप छोड़िए, आप आजीवन हमारे यहाँ रहें, फिर भी हम आपकी सेवा करेंगे। प्रभु, भोजन पाइए।
मैंने जो श्राप दिया है और श्राप को कभी वापस नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, क्योंकि तुमने हमारे हमसे कुछ आके बात तो की, भोजन के बारे में पूछा और कुछ पूछा, मेरा कहना मानो, तुम जो कुछ यहाँ से लो और यहाँ से इस गांव को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ।
स्वामी जी, आप तो जा रहे हैं। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी चले गए। अब गांव में आग लगने वाली है और मुझे बचना है। अब मैं अपनी पत्नी को बुला लूं। अरे अरे, भाग क्या भाग्यवान, भाग क्या भाग्यवान। स्वामी जी कह गए हैं, श्राप दे गए हैं, इस नगर में आग लगने वाली है। अरे भागो भागो, जो कुछ भी है हाथ में, अरे ये थैला छोड़ो, चल ले 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 ले, चल भागो। और पीछे मन देखना, पीछे देखेगी तो ये कह गए थे बाबा जी, मेरे कान में जो कहा था तूने ध्यान दिया? पीछे देखेगी तो बाबा जी कह गए थे बंदर बनरिया बन जाओगे, डुम डुमिया के सारे नाचना पड़ेगा। पीछे मन क्यों देख रही है? चलो ये तो नहीं देख रही है, मैं देख लूं।
हाँ दोस्तों, हुआ ऐसा, वो तो वहां से भागे और महात्मा जी ने एक बात कही, लला पीछे घूमी के मत देखियो, जो अगर पीछे घूमी के देखो तो मतलब लेकिन वो ना माने, और जैसे पीछे घूमी के देखो है तो वो बंदर और बनरिया बने। काया जब पलटी है उसके बाद में वो जंगल में रहने लगे, रहते 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 कुछ समय जब व्यतीत हुआ, लेकिन एक बार एक ऐसी रात आई जिस वृक्ष पर वो बंदर और बनरिया रह रहे थे, और बाई वृक्ष पे एक हंसक जोड़ा आओ, तो हंसनी ने एक बात कही, महाराज कोई ऐसी बात कहो जैसे रात कट जाए। और जब हंस ने इतने शब्द सुने तो तुरंत ही जवाब दो, हम तुम्हें बता रहे हैं, आज रात में जो शुभ घड़ी है, काऊ की अगर काया पलट गई होए और जो बरगद के नीचे ताल है जामे अगर कोई नहले तो वो बहुत सुंदर बन जाएंगे। उनकी बात जैसे ही वो बनरिया ने सुनी, वे तो बंदर वे तो आराम से लेते, उन्हें कोई मतलब नहीं। और जैसे ही बा ने सुनी, सुबह उन्हें जगाई उठी, जगातरी लेकिन ना जगी, और जब ज्यादा जगाओ सुई उन्हें गुस्सा आएगी, सुबह लात दही खेचेगी। अब बनरिया जो रहे वह ताल में गिर पड़ी, और जैसे ही ताल में गिरी काया ही बदली गई। सुंदर सी जब वो लड़की बनी है,
जादागिरी बंदरिया ताल में के सुन लियो दादा चितलाई,
कूदी तो बतो बड़ी सुंदर लड़की बनी गई। और बे जो बंदर रहे बे तब उठे जब सुबह घड़ी निकली गई। अब जैसे ही बे उठे अब बेर बेर ताल में कूदी पत्ता, लेकिन बात है वो तो कहा है। अब बाई समय के बीच में भैया भाव ऐसो
कि रह न लगे बाई ब्राचपे मेरे भैया,
तब तक ऐसो भाव। एक दिना एक राजा रहे और राजा शिकार खेलवे के लिए जैसे ही भाई जंगल में पहुंचो है और वे हिरन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे और हिरन तो ना मिले लेकिन वो लड़की जो रहे जैसे ही उनने देखी अब सुंदर तो थी बहुत ज्यादा। अब वे शिकार खेलवे तो भूल ही गए, वो लड़की की तरफ भागे भागे। जैसे ही वे लड़की की तरफ भागे लेकिन वो लड़की ने जब राजा देखो तो वह खोह की तरफ भागी और खोह में जाए कि जैसे ही घुसी है राजा ने आवाज लगाई कि बाहर निकल के आओ। तो लड़की ने जवाब दिया है हम नगिन हैं, हम तुम्हारे सामने कैसे आ सकते हैं। राजा से जैसे इतने शब्द कहे, बाकी बाद में राजा जो रहे उन्होंने अपना पीतांबर नीचे डालो है, और लड़की ने जैसे ही अपने शरीर पे वो पीतांबर लपेटो बाहर निकल के आई, और जैसे ही राजा ने देखो बेचारे ही बदले गए।
बाजी वाह, इतनी सुंदर, ये तो मेरी रानी होनी चाहिए, इसे तो महलों में रहना चाहिए। ये इस जंगल में रह रही है।
ऐसा करो ना, तुम हमारे साथ में चलो।
मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम जानते हो मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और अपने पति के साथ में समय गुजारना चाहती हूं।
अरे काहे नहीं जा सकती भैया, अरे नहीं मालूम कैसा तुम्हारा पति है जो तुम्हारी तो बिल्कुल कदर ही नहीं करता।
ऐसी बात मत कहो, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है।
कैसा प्यार करता है? अगर तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता तो तुम्हारे शरीर पर वस्त्र नहीं होते क्या? तुम्हारे शरीर पर गहने नहीं होते क्या? और तुम्हारा पति कैसा है भाई, कैसा है, कहाँ है?
मेरा पति मेरे पास में है, जो आपको ये बंदर दिखाई दे रहा है ये मेरा पति है। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती।
ये बंदर, और मतलब तुम्हारा पति?
हाँ मेरा पति है।
ये कैसे हो सकता है? अरे इन्हें छोड़ो, कहाँ बंदर के पीछे वैसे ही डरी है।
तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम्हारे साथ में, चले जाओ यहाँ से।
मैं राजा हूं और हमारे घर में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है।
कोई कमी नहीं है मुझे तुम्हारे, तुम राजा हो, तुम्हारी धन दौलत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लालच मत दिखाओ, चले जाओ यहां से।
नहीं मालूम तुम्हें, यहां जंगल में जो तुम फल खा के रहती हो ना, अरे महलों में चल के तो देखो, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा में लगा देंगे। शरीर पर वस्त्र होंगे, गहने होंगे, और हम तुम्हें क्या बताएं। मेरा कहना है कि चलो संग में तुम घर पर यो प्यारी।
नहीं।
क्यों? चलो संग में तुम घर पर यो प्यारी, बनाऊं अपने दिल की दुल्हनिया। चलो घर पर तुम मेरे संग में, बनाऊं अपने दिल की दुल्हनिया। थोड़ा हमारे चेहरा की तरफ देखो ना।
नहीं जाना। चले जाओ।
देख रही भाई, हमारी तरफ देखो ना।
तुम्हारी तरफ देख करके मुझे क्या फायदा है? क्यों बार बार कह रहे हो?
तुम चाहे लाख बार मना करो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो बैठो मेरे साथ।
नहीं, नहीं जाऊंगी।
बैठो ना।
नहीं जाऊंगी,
मैं कह रहा हूं बैठिए।
नहीं जा सकती।
कैसे नहीं जा सकती, देख रहे हम। बैठो।
नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दो मुझे।
नहीं रुके।
बचाओ, बचाओ, छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा पति रह जाएगा मेरे बिन। छोड़ दो मुझे।
नहीं रुके।
बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे।
नहीं रुके।
बचाओ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बे, हम घर पर आ गए और इन महलों के अंदर रहो। अब वो ऐसे थोड़ी रानी बन के रहना पड़ेगा।
तुम ये क्या बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी रानी बन के? ये तो कदापि नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अपना सत्धर्म नष्ट नहीं कर सकती। क्या बात कह रहे हो? लेकिन मुझे रखना ही चाहते हो तो एक वायदा निभाना पड़ेगा।
बोलो बोलो, तुम्हारे लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बोलो ना।
सुनो
के बारे बरेसी बाबूली रहो
कागज। क्या कहा तुमने भाई?
मैं सही कह रही
हूँ। अरे ना जी ना, ना जी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे थोड़ी रह सकते।
देखो, किसी स्त्री के साथ में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझे लेके आए हो तो ये बाधा तुम्हें निभाना पड़ेगा। और सुन रहे हो, अगर ये मेरे साथ में ऐसा नहीं किया तुमने तो सुनो,
अरे हुज्जत करोगे मेरे साथ।
क्या कहा?
अगर मेरे साथ में जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते।
इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझे रखना चाहते हो तो जो मैं आपसे वादा ले रही हूँ वो पूरा करो।
सा से बात मेरी मान लो अरे परदेसी, कोई धर्म ने भइयो मेरे साथ जी।
सुन रहे हो, अगर मुझे रखना चाहते हो तो ये वादा तुम्हें पूरा करना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे 12 वर्ष की तो बात है, चलो छोड़ो। तुम हमारी लड़की के समान हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 12 वर्ष के बाद में फिर।
हाँ, 12 वर्ष के बाद में मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के रहूंगी, ये वादा करती हूँ।
ठीक है ठीक है, ये तो सही है।
महाराज।
हाँ जी बोलिए।
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो।
मेरी एक चीज पर बहुत इच्छा है, क्या आप पूरी कर सकते हो?
बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
महाराज, मैं बंदर और बदरिया का नाच देखना चाहती हूँ, क्या मुझे दिखा सकते हो?
अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी दरबार में जा रहे हैं, मंत्री से बोलेंगे। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। मंत्री।
हजूर।
समझ में नहीं आता तुम कहां खोए रहते हो।
नहीं हजूर, आदेश करें।
हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब भी खोए हुए हो तुम।
नहीं हजूर, अन्नदाता आपके आदेश का पालन होगा, हुक्म कीजिए महाराज।
ऐसा है, चारों तरफ ये खबर पहुंचा दो कि राजा के यहां जितने भी मदारी हैं इस राज्य में जो रहते हैं।
हाँ हजूर।
उन सब मदारियों को बुलाया जाए।
सब मदारी एक साथ?
अरे एक साथ नहीं तो अलग अलग बुला लो, लेकिन बुलाया जाए।
हजूर आपका आदेश हो गया, अब हम जा रहे हैं, और एक भी मदारी ऐसा नहीं रहेगा जो अपने बंदर बंदरिया लेकर के आपके दरबार में ना आए।
बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए।
सुन रहे हो सभी नगरवासी, महाराज का हुक्म है, एक भी मदारी बिना बंदर और बंदरिया के, समझ रहे हो? बात पूरी दोहराऊ, बंदर बदरिया साथ लेकर महाराज के दरबार में अपना वो क्या दिखाया जाता है, दिखाना है, वहां खेल दिखाना है। महाराज ने ये आदेश किया है कि उनको जिसका खेल सबसे अच्छा होगा
बहुत अच्छा इनाम मिलेगा।
हजूर हजूर।
बोलिए बोलिए।
आपके मंत्री ने कहा कि बंदर बदरिया को लेके आना है। देख लीजिए हजूर, ये बंदर इस बंदरिया से 1.5 साल बड़ा है और फिर भी बराबर मालूम पड़ता है।
मदारी हो ना?
जी पैदासी मदारी हूं महाराज।
कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप दिखाइए, क्या दिखाने के लिए आए, नाच दिखाने आए ना।
शमल जा छमिया। हजूर इसने बनारस में जाकर के अपना नाम ऊंचा किया, और ये जो बंदर है ये नखलऊ के बड़े बड़े नवाबों के अनाज तारा, बहुत बहुत प्रसिद्ध बंदर है।
अच्छा
हम शुरू करते हैं। हाँ छमिया तुझे नाचना है, और तू हरकत नहीं करना है, महाराज का दरबार है। अन्नदाता।
बोलिए बोलिए।
खेल शुरू है, आप अपने दरबार के सहज सब लोगों को देखो। हाँ छमिया, ए शुरू छमिया। ये डमरू पर देखो किस तरीका से, ये मेरे डमरू पर किस तरीका से नाचती है छमिया। अरे छमिया ना छमिया, तुझे पैसा मिलेगा, बाबू का दरबार है, पैसा मिलेगा छमिया।
बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
हुकुम महाराज।
कोई बात नहीं, हमने देखा अभी और भी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा नाचते हैं ये तो।
हजूर इससे अच्छा।
अच्छा भी नाचते हैं अगर सुबह के वक्त नाचे तो, वो पैसे के हिसाब से सब काम चलते हैं।
नहीं नहीं आप बताइए, हम आपको पुरस्कार देंगे, ऐसी बात नहीं है। बोलिए
माजूर, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आप देंगे उसी को हम ले लेंगे।
अरे मंत्री
हजूर,
इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ।
हाँ हुकुम महाराज।
तुमने देखा ये इस मदारी ने तो बड़ा अच्छा नाच दिखवाया,
बहुत सुंदर बना, अत्युत्तम महाराज।
ऐसा करो, इसकी जो इच्छा हो उतना इसे पुरस्कार दे दो।
हजूर आदेश। ए मदारी।
हाँ हजूर।
ए मदारी, महाराज का हुक्म है और तुम ये थाल भर के जवाहरात हीरे ये ले जाइए।
अन्नदाता कीजिए हूँ, बहुत मोमगा इनाम मिल गया, अब कई दिनों तक मौज रहेगी। चल मेरी छमिया, अन्नदाता ने मौज कर दी। चलो, ये लड़की क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही है? ये लड़की
मालूम पड़ता है छमिया खेल अच्छा हो गया, इसलिए तू तो इस छमक छल्ला के संग है और ये रानी है। नहीं मारा जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचूंगा।
भैया।
हाँ हमसे कहा?
हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ हम समझते हैं आप यही कहोगी खेल फिर दिखाओ।
नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो तुम्हारे साथ ये बंदर है,
हाँ?
जितना तुम पैसा धन दौलत लेना चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बंदर को दे जाओ।
नहीं नहीं राजकुमारी जी, रोजी रोटी पेट पे लात मत मारो, ये रोजी रोटी का सवाल पेट का सवाल है।
नहीं भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जितना धन मांगोगे मैं उतना दे दूंगी, लेकिन इस बंदर को दे जाओ मुझे।
राजकुमारी जी, तुम हाथ जोड़ती नहीं हो, जोड़ती नहीं हो, तुम हाथ मेरे काट रही हो। जब बंदर तुम ले लोगी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा।
नहीं, जितना तुम कमाओगे उतना मैं तुम्हें धन दौलत दे दूंगी।
दे दो,
लेकिन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस बंदर को दे जाओ मुझे।
अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है तो लाओ, आप क्या देना चाहती हो, हम दूसरा पकड़ लेंगे।
लो मैं तुम्हें अपने कंगन उतार करके देती हूँ।
कंगन? राजकुमारी जी एक बात पूछूं, ये असली है?
नहीं, तुम ये सोच रहे होंगे ये नकली है, ऐसा नहीं है भैया, मैं तुम्हें असली कंगन दे रही हूँ।
धन्य हो आप, जुग जुग बढ़ो, हमेशा फरो पूरो, और तुम्हें बंदर को ही देखने की इच्छा हो मैं फिर लेके दूसरा आऊंगा।
नहीं भैया, बस इसी बंदर की जरूरत है।
भक्तो, हुआ ऐसा, मदारी जो था वो तो राजकुमारी को बंदर देने के बाद में चला जाता है। वो लड़की उस बंदर को लेके जैसे ही महलों में पहुंची है, लेकिन राजा के घर में जो और लड़कियां थी उन्होंने जब उस बंदर को देखा तो एक दूसरे से कहने लगी, बहन ये बंदर तो वही है जो दरबार में नृत्य दिखा रहा था, और ये तो बड़ा अच्छा नाचता है, चलो ना हम भी इसका नाच देखें, दोबारा फिर से हम इसे नचाएं। वो लड़की बंदर के पास में पहुंची और उसने बंदर को मारना शुरू कर दिया, लेकिन बंदर वही था जो उस लड़की का पति था, वो नाचना तो जानता नहीं था। वो लड़कियां उसे मारती रहीं, वो बंदर वहीं पर खत्म हो जाता है। जब बंदर खत्म हो जाता है, उस लड़की ने देखा तो वो पतिव्रता पत्नी बंदर के मृतक शरीर को लेकर रोने लगी है।
आरे ले बंदर की लाश नारे जब गैया सी ढकलाई रे,
मेरे भैया, अब ऐसा हुआ वो लड़की जो थी वो बंदर के मृतक शरीर पर रुधन करती रही। उसके बाद में उस राजा को बुलाया और हाथ जोड़ करके एक बात कही है, पिताजी आप ऐसा करो एक चिता बनवाओ, मैं अपने पति के साथ में सती होने के लिए जा रही हूं। राजा ने जब सुना उसे मना भी किया है, समझाया भी है, लेकिन वो लड़की जब नहीं मानी तो एक चिता बनवाई। उस लड़की ने बंदर की लाश को लेकर के उसी जलती हुई चिता में जब वो बैठ जाती है, वो लड़की जब उस बंदर के साथ में जली है, रात का समय हुआ तो भगवान शंकर और पार्वती निकले, लेकिन जब वो चिता जल रही थी, चिता तो एक थी लेकिन उसमें से लपटें दो निकल रही थी, तो पार्वती ने भोले बाबा से पूछ लिया, हे प्रभु ये हम जो चिता देख रहे हैं चिता तो एक ही है लेकिन इसमें से दो लपटें निकल रही हैं, बात क्या है? तो भगवान शंकर ने सारी बात समझाई, पार्वती तुम्हें नहीं मालूम है पहले जो कुम्हार और कुम्हारी थे उसके बाद में वो बंदर और बंदरिया बन गए, लेकिन जो बंदरिया थी वो लड़की बन गई, बंदर उसकी काया पलट नहीं हुई, उसके बाद में बंदर खत्म हो गया, तो वो पतिव्रता पत्नी अपने पति के साथ में जीवित जली गई, इसलिए इसमें से दो लपटें निकल रही हैं। तो पार्वती बोली, प्रभु ऐसा करो ना, इन्हें कोई ऐसा वरदान दे दो जब इनका दूसरा जन्म हो तो मानुष यौन में ही पैदा हो। तो भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया और भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब देखते हैं यहां से आगे, जब वो लड़की दूसरे जन्म में पैदा हुई तो
कि पद्मा सेठ की लली सुबाऊ की भली सुनो सरदारी, ओ सारंगा जा को नाम रे के चंद्र बदन उजियारी,
और उसका नाम सौरंगा रखा, और वे जो बंदर बने आते वो
जगदीश भूप को कुमर देख मन सुगर की सूरत प्यारी है, सूरत प्यारी जग सदा ब्रज है नाम की सुनो यगारी, जग सदा ब्रज है नाम की सुनो यगारी,
ऐसा हुआ पद्मा सेठ के घर में जब वो लड़की पैदा हुई तो उसका नाम सारंगा रखा, और जगदीश के यहां जो लड़का हुआ उसका नाम सदा ब्रज रखा। धीरे 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 वो दोनों बड़े होने लगे, और जब थोड़े बड़े भए सदा ब्रज जो रहे वे तो भैंसियां चुंगाए उठे, और सारंगा वो पढ़ने के लिए जा रही। अब सौरंगा पड़वे के लिए जा रही और सदाव्रत भैंसियां चुंगाए रहे। एक दिन सदाव्रत जो रहे और वे तो अपनी भैंसें घेर रहे,
बड़ी सुंदर लड़की है, चलो हम जहां से दो बातें कर ले, पूछ ले तुम्हारा नाव का है कि नकी लड़की हो, कहां से आई हो? अरे रुकियो ने, मेरी बात सुनो। हम तुमसे एक बात पूछ रहे।
क्या पूछ रहे हो?
हम पूछ जा रहे हैं
कि किन की है तू लाडली, अरे होरी प्यारी, कोई कहा तुम्हारो गंगा तुम्हारे पिता को नाम कहा है और तुम्हारो नाम कहा है? और कलम बूदी का तेरे हाथ में, और मेरी प्यारी
हम क्या कह रहे?
हाँ,
कलम बूदी का तेरे हाथ में, अरे मेरी प्यारी, कोई कहा तुम्हारो गंगा काम जी।
तुम्हारो नाम कहा है, तुम्हारे पिता को नाम कहा है? और जे हाथ में जे पकड़े हैं और जे मतलब जाको का मतलब है? कहाँ जा रही तुम? का नाम है
मेरा?
हाँ हाँ,
सुनना चाहते हो?
अब वही तो पूछ रहे हम, बताओ ना।
अच्छा सुनो।
अरे बिटिया तो कहियो पदमा सेठ की, अरे मेरे ग्वाला, कोई सौरंगा मेरो नाम जी।
ए ग्वाला
बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं।
तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूँ?
हाँ हाँ भाई, तो पूछ रहे तुम्हारा नाम।
मेरा नाम सारंगा है।
सारंगा, बड़ो अच्छो नाम धरो तुम्हारा माता रही।
और सुनो।
हाँ,
और तुम एक बात और पूछ रहे थे कि मेरे हाथ में क्या चीज है।
भाई तो पूछ रहे हम,
तो वो भी बताती हूँ सुनो।
अरे कलम बूदी का मेरे
सुनो, तुमने मेरा तो पूछ लिया, लेकिन एक बात बताओ, अपना भी तो पता बता दो। ये लाठी कमरिया लेकर के कहाँ फिर रहे हो? क्या काम करते हो?
हम अपनों पतो बताएं?
हाँ,
अरे तो सुनो ना, तुमने बताओ तो हम बता रहे। सुनो,
अब बेटा तो कहिए जो गोदी सके, अरे मेरी प्यारी। हाँ बेटा तो कहिए जगदी सके, अरे मेरी प्यारी, कोई सदा ब्रज मेरो नाम जी।
तुम्हारो नाम अगर सारंगा है और हमारो नाम सदाब्रज है।
ओ, बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन काम कैसा करते हो?
अब बात रही जो लठा कमरिया की, तो हम तुम्हें बताएं?
हाँ बताओ।
अरे लठा कमरिया मेरे हाथ में, अरे होरी प्योरी, ओ लठा कमरियो मेरे हाथ में, अरे योरी प्यारी, कोई भैंस चो गई वो मेरो काम जी।
एक बात बताओ।
हाँ हाँ।
बड़े सुंदर हो और बड़ा सुंदर नाम है, लेकिन ये भैंस, ये अच्छा नहीं लग रहा है।
कोई बात ना, कोई बात ना, हो अबे घेरे लाए जाते जी सब। हम बिल्कुल ना चुगाए, अब तो कोई सवाल ही ना उठ जो हम भैंस चुगाए। अब हम पढ़ल जाए, अब चाहे कछु हो जाए, अब हम बिल्कुल ना बांध सकते। जहाँ भजे तय भजन दे चुपचाप। हम तो कैसे हूँ, अब भैंसियाँ चुगा ही ना सकत।
अरे सदाव्रज,
हमसे बात मत करो, हम बहुत गुस्सा में।
काहे के लिए गुस्सा में हो, कोई बात तो है।
ले नेक छोटी बात है, कुली लंबी छोटी बात है।
अच्छा, किसी ने गाली दी तुम्हें?
अरे वह बात ना है, वो तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात तो जाए कि हमें भैंसिया भैंसिया चुगवाते तुम, क्या मतलब है
बेटा? पढ़ने के लिए तुमसे कहा, तुम पढ़ने गए नहीं, और तुम अभी नौकरी के लायक हो नहीं, तो एक बिना पढ़े लिखे लोग भैंस ही चराते। हम गरीब लोग हैं, भैंस नहीं चराओगे और क्या करोगे?
हम बिल्कुल ना चरें, अब हम आज से पढ़ने के लिए जाएं।
ले जो गंगा को पानी एकदम बम्बा में कैसो, पहले तुम पढ़वे से ना ही करते थे, अब कह रहे हम पढ़न जाएंगे।
अब हम अभय से पढ़ने के लिए जाएं, हम मान ही ना सकते।
तो ठीक, तुम पढ़न जाओ।
ठीक है ठीक है।
कौन भाई, तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम कौन हो?
हमसे पूछ रहे मां साहब?
नहीं नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे। ये सभी विद्यार्थी हमारी पाठशाला में बहुत दिनों से पढ़ते हैं, और तुम आज बरसाती ओलों की तरह बीच में टपक पड़े हो। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो भाई, क्यों आए हो, क्या चाहते हो
मां साहब?
हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं ऊंचा नहीं सुनता, बोलो।
हम बताएं मां साहब।
हाँ बताओ।
हम बताएं मां साहब।
अरे भाई बताओ बताओ, लिख के दे दूं कि तुम बताओ क्यों आए, कौन हो?
हम बताएं मां साहब।
लौटी लेके इतना मारता हूं, इतना मारता हूं, जो लड़के पढ़ के यहां से गए हैं वो मेरा नाम भूलते नहीं। हम भी कोई ऐसे ही है, सागर मुंशी जी नहीं है। बोल जल्दी बोल।
तुम मारो ना तो हम बताए मां साहब।
भाई मैं क्यों मारूंगा, मैं मरा जा रहा हूं, जल्दी बोलो भाई। हमारा हमारा विद्यालय का समय नष्ट हो रहा है, तुम पढ़ने आए हो, क्यों आए हो? बोलो नाम क्या है तुम्हारा, पहले नाम बताओ।
सदाव्रज।
सदाव्रज, पहले कौन से विद्यालय में पढ़ते थे?
कहूं ना मां साहब, भैंसिया चुगाते और आज हम पढ़ने के लिए आए हैं।
तो हमें क्या, हमें तुमने यहाँ क्या भैंसों का घर समझ रखा है? क्या ये चारे कूटने की मशीन सिखाऊं तुम्हें? ये विद्यालय है, जब पढ़ते नहीं थे तो पढ़ो मत, भैंसे चुगाओ, जाओ 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 जाओ, भैंसे चुगाओ।
हम ना जाए मां साहब, हम पढ़ने के लिए आए।
पता नहीं आज किसका मुंह सुबह से देखा। ठीक है भाई ठीक है, सबसे पीछे बैठो, चलो सबसे पीछे।
और पीछे बैठे मां साहब?
अरे अब तो पीछे जगह ही नहीं है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो।
ए बच्चे।
अरे मैं बोल रहा हूं तुमसे, पीछे पीछे पीछे। सदाव्रज खड़े हो, खड़े हो। कहां देख रहे थे?
हम मां साहब कहूं ना देखते, हम तो बैठे आते।
तुम बैठे थे, तुम बैठे थे, हम बेवकूफ के पट्टे हैं जो हम तुम्हारे पास उठ के आए। तुम इस बालिका की तरफ क्यों देख रहे थे?
हम मां साहब थोड़ी देखो, हम ना, हम तो बिल्कुल ही ना देखो।
इधर से पीठ बाहे करो, इधर घूमो घूमो घूमो, बस अब
लड़की, क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा?
हाँ हाँ, तुम्हारा?
मेरा सारंगा है।
सारंगा?
हाँ।
तुम पढ़ने में होशियार हो और उपस्थिति भी विद्यालय में तुम्हारी सही रहती है, और ये लड़का तुम्हारी तरफ बार बार देखता है, इससे बचने के लिए हमें तुम्हारी व्यवस्था करनी पड़ेगी।
सुनो सुनो
बेटा, हम घूम जाए मां साहब।
अरे घूम मत जाओ, उधर कोई और डंडा इतना मारूंगा, पता नहीं स्वर कहीं के कहां से इधर को मुड़ के और देख लिया तो मैं पीठ तोड़ दूंगा।
मुंशी जी
सुन सुन लड़की, हम तुम दोनों के बीच में अब पर्दा करेंगे, कितना भी चाहे रुपया खर्च हो, चाहे छंदा करवाना पड़े, हम पर्दा लगवाएंगे बीच में।
अरे वही तो बात कह रही हूँ।
तुम क्या कह रही हो बेटी?
आप कह रहे हैं कि पर्दा करवाएंगे, और पर्दा कोई छोटी सी चीज नहीं है जो हाल हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, पर्दा की बात है ना, तो सुनो।
बोलो बोलो।
पर्दा करता में दिन लागे मुंशी जी, कोई लागे तुम्हारो दाम जी, सुन रहे हो?
हाँ हाँ।
अरे पर्दा करने में तो काफी समय लग जाएगा,
फिर क्या करूं, विद्यालय का अनुशासन ही भंग हुआ जा रहा है, इस लड़के ने आकर मेरा खून पी लिया, क्या करूं तुम बताओ बेटे।
अरे पर्दाधारी है मेरे बाप से मुंशी जी, अरे पर्दाधारी है मेरे बाप से मुंशी जी, कोई बाने ते ले
अत्युत्तम अत्युत्तम, अब पर्दा करवाएंगे बनवाएंगे और पैसा खर्च करेंगे, समय लगेगा, और एक एक दिन जिंदगी का अमूल्य होता है, शिक्षा का समय। बालिका तुम इस बच्चे को संग ले जाओ और अपने पिता के यहां जो पर्दा रखी है कह देना हेडमास्टर साहब ने मंगाई है, उस पर्दा को लेके आओ।
मुंशी जी अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर्दा लेकर के अवश्य आऊंगी।
हाँ, तुरंत जाओ और तुरंत ही आओ।
हाँ दोस्तों, जब वो लड़की घर पर जाती है और वहां से एक पर्दा लेके आई है, जैसे ही मास्टर साहब के नजदीक पहुंची तो एक तरफ सदा ब्रज को बिठा दिया और एक तरफ सारंगा को, और बीच में जब पर्दा लगाई, अब तो सदा ब्रज बड़ो परेशान के कोई दिखाई नहीं पड़ी। भाव ऐसो कि जो पर्दा रहे बामे थोड़ो सो सुराख रहे, और उनने अपनी बाई से आंखें लगाई लें। हाँ, और जब फिर यू दिखाई नहीं पड़ी तो बामे सुराख में उनने हाथ डालो और भाव का
नानी बाने लली निहारी, सदा ब्रज ने जब सारंगा को नहीं देखा उसके बाद में, अरे नानी बाने लली निहारी, बाने धरी के पर्दा भारी,
सौरंगा और सदाब्रज जब बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और मास्टर साहब ने जब देखी तो अपने दिल में एक बात सोची कि जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो रहे, और अब हमें जत देखो चाहिए कि इन दोनों में प्रेम है तो है कैसो। मास्टर साहब ने सब की छुट्टी कर दी, बोले तुम्हारी सब की छुट्टी है।
तो सब की छुट्टी करी देरा नहीं करी सुना मेरे भाई, और सदा ब्रज सोरंगा से कई तुरंत समझाई।
मास्टर साहब जब हट गए तक बाद में सबकी छुट्टी करी, जवाब दो तुम्हारी सबकी छुट्टी है लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है। बात कही लला
तुम दोनों घूम के आओ फिर घर जाओ, कई समझाई कई समझाई। सुन की इतनी बात चले हर साई, आई सुन की इतनी बात चले हर साई।
दोस्तों मास्टर साहब ने जब यह कहा है कि तुम दोनों इस बगीचे के अंदर चले जाओ और बगीचे में घूमते रहना, उसके बाद में हमारे पास लौट के आना। अब देखते हैं यहां से आगे भाग दो में, राठौर कैसेट में।